शांति। आज के सुरम्य संध्या के समय बाबा की याद से पहले हमें बाबा के अमूल्य रत्न मिले हैं, आदरणीय राजयोगिनी दिव्या बहन, आप बाबा के पुराने समर्पित रत्न हो। करीब 45 साल से ईश्वरीय सेवा में आपने अपना जीवन समर्पित किया है। बंबई मायावी नगरी कहो, धन में भी बहुत आगे है तो फैशन में भी आगे है, ऐसी नगरी में रहते हुए आपने बड़ी अच्छी तपस्या और सेवा करके दिखाई है। बंबई में 10 साल पहले आपने प्रभु उपवन नामक बाबा का बहुत बड़ा भवन निर्माण किया। अभी थोड़े समय पहले ही आपने दशाब्दी समारोह मनाया था। बंबई का सबसे बड़े से बड़ा सेवा स्थान ये प्रभु उपवन है, जहां रेसिडेंशियल शिविर भट्टी आदि भी कर सकते, ऐसी बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। आज हमारे बीच इसीलिए है, आप कहेंगे बंबई से तो कैसे आएंगे सिर्फ ये भट्टी के लिए, लेकिन ज्ञान सरोवर में ट्रांसपोर्ट विंग की भी प्रोग्राम सेवाएं थी, वो पूर्ण हुई और इस कार्यक्रम में इसीलिए हमारे पास आप उपस्थित हो। आप ट्रांसपोर्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हो, बंबई के कई वीआईपीज और कई कलाकारों का आपसे अच्छा संबंध संपर्क है, और हमारे साथ आज इस विषय पर अनुभव व्यक्त करेंगे, ज्ञान की बातें सुनाएंगे। विषय है वृत्ति द्वारा वातावरण में परिवर्तन। बहुत सूक्ष्म बात है, आपकी महीन अनुभूति हमारे आगे रखेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ आपसे और आपके लिए यही दिल में कहने का उमंग आता है कि शीतलता से भरपूर चांद हो आप, इस सभा की शान हो आप। बहुत बहुत दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। हमारा भी सौभाग्य है कि आप इतने दूर गुवाहाटी से सभी भाई बहने बाबा की तपस्वी भूमि में पधारे हैं और आप सबसे मिलने का और साथ साथ कुछ ज्ञान का चिंतन और अनुभव के लेन देन करने का मौका मिला है, और उसमें भी निमा शाम के समय पर कि विशेष इस समय पर हमारी बुद्धि की तार नेचुरली बाबा के तरफ जाती है और याद से हम पूरे विश्व के अंदर अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को विश्व को परिवर्तन करने का शुभ संकल्प करते हैं, क्योंकि वायुमंडल का बहुत बड़ा प्रभाव, वातावरण का प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। आप सब इतने दूर दूर से यहां भट्टी करने के लिए क्यों आए? भट्टी गुवाहाटी में भी कर सकते, अपने अपने सेवा केंद्र में भी करते हैं भट्टी, लेकिन यहां आए हैं विशेष पांडव भवन की तपस्वी भूमि, बाप दादा की कर्तव्य भूमि, त्यागियों की भूमि, जहां से पूरे विश्व में बाबा का नई दुनिया के स्थापना का कार्य यहां पांडव भवन से शुरू हुआ है। बाप दादा ही नहीं लेकिन हमारी दादियों ने भी त्याग और तपस्या इस स्थान पर रह करके की है। तो यहां के कण कण में उस तपस्या का प्रभाव है और यहां जब आते हैं नेचुरल याद, और उसमें भी विशेष पांडव भवन में बाबा का कमरा, वो हम सबको चुंबक की तरह खींचता है, आकर्षित करता है। क्यों? यहां का वायुमंडल, यहां का वातावरण, वो बहुत हमें हेल्प करता है तपस्या में, मदद करता है। बाबा तो करते हैं, हमारी वरिष्ठ दादियों की भी शुभकामनाएं हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने जो माहौल बनाया है यहां पर, जो वायुमंडल क्रिएट किया है, उसकी बहुत बहुत हमें पुरुषार्थ में मदद मिलती है। और जैसे जैसे इस विश्व के परिवर्तन की घड़ियां नजदीक आ रही है, तब बाबा भी कहते हैं कि अब वाणी के बजाय वृत्ति का परिवर्तन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को चेंज करो। अब समय अनुसार इन सूक्ष्म सेवाओं की अति आवश्यकता है। स्थापना के कार्य में एक स्लॉट, एक पीरियड था जिसमें वाणी का प्रभाव और वाणी द्वारा सेवा, लेकिन अब वो वक्त आया है कि जो वातावरण और वाइब्रेशन को बनाकर अब सेवा करें। बाबा ने कवयित्व मुरली में कहा है कि अपने सेवा के केंद्र को शांति का कुंड बनाओ, अर्थात सेंटर के वो शांत और पवित्र वाइब्रेशन क्रिएट करें। और क्यों ऐसे करने के लिए कहा है? जैसे ठंडे पानी का कुंड हो, उसके अंदर कदम रखने से ही तन और मन क्या हो जाता, शीतल हो जाता है। उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ होता है? सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ कि हम उस कुंड में गए, यही हमारी मेहनत। बाकी शीतलता का अनुभव कदम रखने से शुरू हो जाता है। इसी तरह से अब आने वाली आत्माएं, बाबा ने हमें भविष्य पहले से बता दिया है कि आत्माएं कमजोर होगी, निर्बल होगी, निरुत्साही होगी। इतनी मेहनत उन आत्मा से पहुंच नहीं सकेगी। अब उनकी सेवा कैसे करें? सुने, समझे, माने, मेहनत करे, अब इतना वक्त भी नहीं देने वालों के पास भी। अभी हम देख ही रहे हैं, आज से यज्ञ में 50 वर्ष पूर्व जो हमें मिल पाता था, छोटा परिवार था, और आज चाहना देने वालों की भी है, चाहना लेने वालों की भी है, लेकिन हो समय अनुसार अभी हो नहीं पा रहा है, समय बदल गया है। इसी तरह से सेवा में भी समय में परिवर्तन आया है, इसलिए आने वाली आत्माएं वो इतनी मेहनत न कर सके, लेकिन वायुमंडल और वातावरण में वो आत्मा प्रवेश करे और वो प्योर वाइब्रेशंस, वो शांति के प्रकंपन उस आत्मा को चारों ओर से घेर ले, एंटर होने से महसूस करे कि यहां के वातावरण में शांति है, शक्ति है, ये स्थान चार्ज है, इस स्थान में पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, कुछ भी ना समझे लेकिन उनको वहां बैठे रहने का मन करे कि बहुत अच्छा वातावरण है, मेरा मन करता है और अधिक बैठा रहूं। अपनी सारी बहनों को, वीआईपीयों की सेवा करने वाले आप सबको पता भी है कि कई वीआईपी आते हैं, कहते इतनी मिनट है हमारे पास या इतना ही समय हमारे पास है, और फिर आते हैं तब समय को भूल जाते हैं। और अधिक इच्छा ऐसे वातावरण में रहने की होती है, और मुख से बोलते भी हैं कि हम बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ का वातावरण मिला, आप सबका संग मिला और मिलता रहे ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसी चेष्टा भी वो करते हैं। तो अब इस प्रकार से सेवा करनी है, न सिर्फ सेंटर के वातावरण की बात है, लेकिन आज की मुरली में वरदान था, चाहे वो ब्राह्मण नया हो चाहे वो ब्राह्मण पुराना हो, लेकिन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? विश्व कल्याण की। ये न समझे कि ये तो पुरानों की है, पुराने न समझे कि हमने बहुत किया भी नयों को करना है, दोनों तरफ से बात है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि ब्राह्मण आत्मा जहां उपस्थित हो, ब्राह्मण के जहां कदम हो, वहां का वातावरण, वाइब्रेशंस चेंज हो जाए, महसूस करें कि आप आए, आप बैठे, आपसे मिले और मेरे स्थान का वातावरण मुझे चेंज लगता है, फील करें। अब परिवार की भी, चाहे हम जो भी व्यवसाय करते हैं या जहां भी जाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों की वृत्ति इतनी श्रेष्ठ और समर्थ हो, इतनी शक्तिशाली हो कि उस वृत्ति से वायुमंडल वह चेंज हो जाए, बदले, परिवर्तन हो जाए। और वृत्ति है क्या चीज जो वायुमंडल को चेंज कर देती है? तो वृत्ति है हम आत्माओं की आंतरिक सूक्ष्म भाव और भावनाएं। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें देख रहा हो तो हम फील करते हैं कि ये व्यक्ति की दृष्टि मेरे प्रति सही नहीं है। भाव देख रहा है मुझे, लेकिन भाव, भावना प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, वृत्ति ठीक नहीं है। किसी से वो वाइब्रेशंस मिलते हैं कि ये मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हैं, बोलता कुछ नहीं है, भाव, अंदर की भावनाएं कहां नफरत या घृणा की फीलिंग आती है कि इनकी दृष्टि मेरे प्रति कैसी है, नफरत की है, घृणा की है। तो आंतरिक वो भाव है ना, अंदर में, अंदर की वो भावनाएं है ना, और वो ही वाइब्रेशंस में, वातावरण में फैलती है, और वातावरण में फैलेगी तो हम फील भी करेंगे, हम महसूस भी करेंगे ही। तो वृत्ति वो चीज है, इसलिए बाबा भी कहते हैं, दो दिन पहले की मुरली में था, कि बच्चे चेक करो कि सारे दिन में मेरी वृत्ति कैसी रही, चेक करो, क्योंकि वृत्ति का वातावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जब जस्ट इफेक्ट है उसी का, वृत्ति से स्थान पर भी प्रभाव पड़ता है, और एक ही स्थान पर कुछ एक प्रकार की एक्टिविटी चलती रही हो तो उस स्थान का भी हमारी वृत्ति और हमारी भावनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। उसमें एक श्रवण की कहानी है कि श्रवण अपने माता पिता को, फेमस बात है कि कावड़ लेकर के माता पिता को यात्रा करने के लिए निकला था, और बीच में उन्हें बहुत प्यास लगी, तो माता पिता ने श्रवण को कहा कि बेटा तू जहां है वहां इस कावड़ को छोड़ दे और आजू बाजू में देखो कि कहीं पानी हो ना तो ले आओ, हमें बहुत प्यास लगी है। छोड़ के गया पानी लेने के लिए, पानी नहीं मिला। आया वहां पर तो कहा कि बहुत वक्त हो गया, आप इंतजार करते होंगे, इसलिए मैं कहने आया कि मैं और जगह देख रहा हूं कि कहीं और जगह पानी है। तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा पानी बाद में, तू पहले जिस स्थान पर तुमने ये कावड़ रखी है ना, हमको बिठाया है, उस स्थान से पहले हमको उठा ले, दूसरे स्थान पर पहले ले जा। तो उसने कहा आपको तो प्यास लगी थी। कहते हाँ प्यास तो है, लेकिन जिस स्थान पर तुमने ये कावड़ रखी है ये स्थान सही नहीं है, वाइब्रेशंस कि यहां रखने के बाद हमारे भाव में, भावनाओं में, हमारे सोच में कुछ और चीजें आने लगी है, तो पहले यहां से उठा, हमको दूसरे स्थान पर ले जा, क्योंकि उस वातावरण से वृत्ति में परिवर्तन कितना प्रभाव है। इसीलिए इस स्थान का महत्व है पांडव भवन का, इंपॉर्टेंट है यहां का। तो ये है वृत्ति। अब हमें अपनी वृत्ति को शक्तिशाली, समर्थ बनाना है, पावरफुल बनाना है। अब कैसे होगी इस वृत्ति को, जिसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके आगे रखूंगी कि सबसे पहले वृत्ति से वायुमंडल तब चेंज हो सकता है, सबसे पहले हमारी वृत्ति शुद्ध स्वच्छ चाहिए, क्लीन नीच चाहिए। आप देखते हैं कि पानी भी जब बहुत क्लीन होता है तब उस पानी के भीतर क्या है, एक एक कण आपको क्लियर नजर आता है, रंग साइज बिल्कुल आप देख पाते हो, पानी के उस पार है लेकिन आप क्लियर उसको देख पाते हो। क्यों? पानी क्लीन है। और वही पानी जब मैला हो जाए, गंदा हो जाए, फिर नीचे क्या है, गंदे पानी के नीचे क्या है पता चलता है, समझ नहीं आता है। बॉम्बे में जब खूब बारिश होती है ना, रोडों पर पानी भर जाता है, तब चलने वाले को भी दिक्कत, क्योंकि गंदा पानी होता है, कहां कदम रखे पता नहीं चलता है कि नीचे क्या होगा। और कई ऐसे केसेस भी बॉम्बे में होते हैं जो बहुत बड़ी ड्रेनेज सिस्टम होती है ने? और कहीं कहीं उसके ढक्कन लगे रहते हैं, पांव और अंदर पूरे वो चले जाते हैं, क्योंकि गंदे पानी में पता ही नहीं चलता है। कार चलाएं तो पहिया कहां चला जाएगा उसका आइडिया ही नहीं आता है, क्यों? पानी गंदा है। वृत्ति हमारी शुद्ध और स्वच्छ होगी, क्लीन होगी, सामने वाला व्यक्ति भी मुझे जो मैं जैसी हूं वैसे वो मुझे पहचान पाएगा, समझ सकेगा, और मैं भी जिनकी वृत्ति स्वच्छ हो उनको मैं भी यथारथ समझ पाऊंगी, पहचान पाऊंगी। और जहां शुद्धि होती है वहां शक्ति होती है, जहां प्योरिटी है नेचुरली पावर है। तो वृत्ति हमारी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, तो वह भावनाएं शक्तिशाली होने से वायुमंडल को, वातावरण को बदल डालेगी। दूसरी बात कि वृत्ति हमारी कल्याणकारी वृत्ति हो, स्व के प्रति, सर्व के प्रति। और बाबा तो अभी हम बच्चों की वृत्ति को, बुद्धि को बेहद में ले चला है कि सारे विश्व की आत्माओं के प्रति हमारी भाव और भावना कैसी हो, कल्याण की। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे इस दुख की दुनिया में, इस पतित दुनिया में लोगों को देखकर आपको कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ करें, वो भाव और भावनाएं वो जागृत नहीं होती है, कुछ कल्याण करने के भाव जागती है या नहीं। और हम तो है ही विश्व कल्याणकारी, कोई भी हो, बाबा तो हमें ये समझाते हैं, कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन मुझे अपने आप को चेक करना है कि वो व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन मैं कल्याणकारी संकल्प उस आत्मा के प्रति कर पा रही हूं चेक कि नहीं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, उनके लिए मैं ऐसा सोच नहीं सकती। और उसके ऑपोजिट ये चेक करना है कि उनके अकल्याण, अशुभ भाव तो मेरे मन में नहीं जागृत हो रहे हैं, उनका ऐसा हो जाए, ऐसा करें, ऐसा करें, ये भाव तो मन में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जैसे भाव और भावना वैसा वाइब्रेशंस आएंगे। सामने वाली आत्मा कैसी भी होगी, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति यदि कल्याण की वृत्ति, कल्याण की भावना है, तो वो फील करेगा कि मैं इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, और ये सब कुछ समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए भी फिर भी मेरे साथ कैसे चल रहे हैं, शर्म आएगी। और प्रैक्टिकल बाबा को हम देख रहे हैं, हम एक 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 बाबा के बच्चे क्या और कैसे हैं बाबा नहीं जानता, नहीं समझता, लेकिन फिर भी आज जितने तक और जो कुछ हम हैं वो किसकी वजह से है, बाबा की हमारे प्रति कल्याणकारी वृत्ति भावना। जितने भी हम बदले हैं आज उससे बदले हैं, उनसे हम चेंज हुए हैं। इसलिए वायुमंडल को चेंज करने के लिए कल्याणकारी वृत्ति चाहिए। बाबा का उत्तरण होता है वही स्थान होता है, लेकिन वायुमंडल कैसा चेंज हो जाता है, वाइब्रेशंस अलग आने लगते हैं। तीसरी बात, वातावरण को बदलने के लिए जैसे कल्याणकारी वृत्ति ऐसे रहम भाव भी चाहिए, दया का भाव। कल्याण के लिए हम सोच ही तब सकेंगे जब पहले हमें उन पर रहम आता हो, दया करुणा। बाबा को करुणा का भी सागर कहा गया है, दया का सागर है वो। बाबा ने ये नहीं देखा कि मैंने इनको बनाया कैसे थे और ये बन कैसे गए हैं, ये बाबा ने देखा नहीं। बदल तो गए लेकिन बाबा के लिए भी हमने क्या क्या कहा, आज भी था, दो दिन से बुल्ली में आ रहा है, ग्लानी सर्वव्यापी कह करके ग्लानी करते हैं, खाली देते हैं, कहां कहां उनको बिठा दिया, क्या सोचा उनके लिए, हम कहां स्थान दिया हमने उनको, जिसने हमको ऊंचा उठाया। तो बाबा को हमारे पर क्या आता है, रहम दया का भाव बाबा का है, और इसीलिए इतने वर्षों से बाबा आज तक अथक और इतने ही प्यार से, इतने ही स्नेह से आज भी बाबा हमें शिक्षाओं से सजा रहा है। और हमारा क्या होता है, एक व्यक्ति को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर हम थक जाते हैं, बस हो गया, फिर मैंने बहुत कुछ इसके लिए किया, मैंने बहुत कुछ समझाया, अब बस, अब इसके आगे नहीं, थक जाते हैं ना। अभी जिस और किसी को करना है भले करे, समझाए, मैं नहीं, बस लिमिट आ गए, हम तो थक जाते हैं। तो बाबा कितना रहम दया का सागर है, जिसने ही हमारे लिए वायुमंडल वातावरण तैयार किया है। तो हमें भी औरों के प्रति क्या चाहिए, रहम का भाव, रहम की वृत्ति, और वो वृत्ति होगी तो क्षमा कर सकेंगे, क्षमा भाव होगा। क्या वह कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो मुझे, ये भाव कब जागृत होगा, क्षमा का भाव। बाबा ने, बाबा के लिए हमने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, बाबा ने क्या की, क्या माफ किया हमें, बच्चे फिर भी आपका कोई दोष नहीं है, ये तो ड्रामा था, ड्रामा प्लेन अनुसार मुक्त किया ना हमको बाबा ने, बच्चे आपका कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो वक्त था, ड्रामा था, ड्रामा अनुसार आपने ये किया, आपका कोई दोष नहीं है, माफ किया बाबा ने, क्षमा दे दी। और हमारा क्या होता है कि हम माफ तो कर देते हैं कई बार, लेकिन स्मृति में भी बहुत रखते हैं, पता है ना आपको, मैंने आपको कितनी बारी माफ किया है, कितनी बारी क्षमा मैंने दी है, बाबा ने मुझे कितनी बारी माफ किया, उसकी गिनती। और हम तीन बार करने के बाद कहते हैं कि हमने आपको कितनी बारी क्षमा दिया, कितनी बारी हमने आपको माफ किया है। और कई बार तो इतने हम गर्म हो जाते हैं और कह देते हैं कि अभी से लेकर कभी भी मैं जिंदगी में तुमको माफ नहीं करूंगा। भाव देखो, नहीं करेंगे माफ। ये हमारी वृत्ति, ये हमारे भाव है। और बाबा हमें कहते हैं बाप समान। बाबा का शो करना है हमको, बाबा को प्रत्यक्ष करना है हमको, तो क्षमा तो करनी होगी, क्षमा का भाव तो चाहिए। आज किसी ने कुछ गलती की, आपने उसको माफ कर दिया, क्षमा दे दी, आप भी लाइट हो जाते हो और सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। नहीं तो तब तक मुझे भी वो ही चिंतन और सामने वाले को भी वही सोच, मुक्त नहीं होते हैं उससे। और भारी भारी एक दूसरे से भी क्या रहते हैं हम, भारी। और इंटरनली एक दूसरे से हम धीरे 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 दूर होने लगते हैं, एक दूसरे से मुंह छिपाने लग जाएंगे, दूरियां बढ़ती है। और क्षमा कर दिया, समीप आए, स्नेह बढ़ा, फेथ बढ़ा, और उससे जिस स्थान पर है वहां का वायुमंडल चेंज होगा, परिवार में या किसी स्थान में। एक व्यक्ति भी नाराज हो करके घर में चल रहा हो तो वातावरण अशांत हो जाता है, शोक वाला हो जाता है, नाराजगी वाला हो जाता है। यदि एक व्यक्ति भी नाराज होता है, घर का माहौल बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए क्षमा भाव, क्षमा की वृत्ति भी आवश्यक है। फिर है गुणग्राही वृत्ति। गुणों को कैच करते रहे, दृष्टि हमारी गुणों को देखती रहे, गुणग्राही वृत्ति। हम ग्राहक हैं, शॉप होती है तो कहते हैं ना, इतने मेरे क्लाइंट हैं, इतने मेरे ग्राहक हैं, लेने वाले, मेरे से इतने लोग खरीदते हैं, इतने लोग लेते हैं। हम किसके ग्राहक हैं? गुणों के ग्राहक है। बाबा से भी गुण और अन्य से भी हम गुण को ग्राहक माना, ग्रहण करने वाले, लेने वाले। आज आप शॉप में जाओगे, घर से निकले हो कि ये चीज मुझे शॉपिंग में से मुझे लेनी है, तो जाने से ही आपकी नजर उसी को खोजना शुरू कर देती है। बहुत सारी चीजें हैं, आजकल तो मॉल है, एक स्थान पर बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम कहाँ जाते हैं और हमारी नजर क्या ढूंढती है, जो मुझे खरीदना है। दृष्टि उसकी खोज में होती है। दृष्टि वहां टिकती है, हाँ यही चीज मुझे खरीदनी है, यही मुझे लेनी है। क्या इसी तरह से यदि मैं गुणों का ग्राहक हूं तो जहां तहां जिसमें भी देखूं गुणों को ढूंढती हूं, मेरी दृष्टि गुणों की खोज में है? क्योंकि देखने का भी प्रभाव है, वर्णन करने का भी प्रभाव है। कई बार कोई सीन सामने आया, आप बोलते कुछ भी नहीं, लेकिन सीन आपने देखा और हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ा, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये पिक्चर के पोस्टर्स मत देखो। क्यों? पोस्टर को देख के हम बोलते थोड़ी है कुछ, सिर्फ देखते हैं, लेकिन उसका भी हमारे पर प्रभाव, और वो देख करके हमारी भावनाएं और भाव बदल जाते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव में भी, मुरलियों में हम सब सुनते हैं, क्योंकि बाबा ने हमसे कुछ नहीं छिपाया है, ओपन रहे, हम छिपाते, लेकिन बाबा ने हमसे कुछ नहीं छिपाया। बाबा ने कहा मैं वैरागी था, लेकिन मैंने सौभाग्य सुंदरी पिक्चर देखा और भाव चिपच हो गए। बताता है ना बाबा, देखने का कितना प्रभाव हमारे पर है। तो अवगुणों को देखे, किसकी कमजोरियों को देखे, तो उसका भी प्रभाव हमारे पर पड़ेगा ना, और उनके गुणों को, कलाओं को, विशेषताओं को देखेंगे तो उस चीज का हमारे पर प्रभाव होगा। इसलिए गुण के ग्राहक बने, और जब हमारी दृष्टि वही देखती है तो मेरी स्मृति में भी गुण ही घूमते रहते हैं, और इसलिए मेरे मुख से भी निकलेंगे कौन सी बात, गुणों की बात। जो मेरे अंदर है वही शब्दों में बाहर आएगा। मैं कुछ और बोलना चाहूं लेकिन बोल नहीं सकूंगी। जो बाबा मुरली में कहते हैं कि यदि आपकी धारणा, आपकी स्थिति, आपकी अवस्था वो नहीं है, तो फिर आप ज्ञान इस मुख से सुना नहीं सकोगे, बोल नहीं पाओगे, बोलती बंद हो जाएगी, बोल नहीं पाएंगे हम। लेकिन ये दृष्टि गुणों को ही देखती है, उनको ही ग्रहण करती है, उसी का चिंतन करती है, तो मुख से क्या होगा, गुणों का ही वर्णन। हाँ, जानते हैं कि इनमें ये गुण, समझ, नॉलेज है कि ये चीज नहीं है, कमी है इसकी, लेकिन मेरे सामने मैंने तो उनमें गुण ही देखे हैं, बाकी को मैंने छोड़ दिया है। इसलिए वो व्यक्ति सामने आए तो तुरंत गुण सामने आता है। हम देवताओं के सामने खड़े होते हैं, तुरंत निकलता है सर्वगुण संपन्न, सोली कलाए संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल के कलयुगी कोई मनुष्य को देख करके आता है मन में? आता है? नहीं आता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। तो जो देखने में आएगा उसी का ही क्या होगा, वर्णन। और गुण देखे हैं तो उनके प्रति मेरी वृत्ति गुण को देखने के कारण मेरे भाव उनके प्रति श्रेष्ठ होंगे, उनके अवगुणों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेन देन नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा कि पतित दुनिया में मनुष्य पतित के साथ ही अपनी लेन देन करते हैं। मुझे क्या करना है, गुणों की ही लेन देन करनी है, क्योंकि वो भाव, गुणों को देखा तो भाव स्नेह का जागृत होता है ना, रिस्पेक्ट, गुण देखने से रिगार्ड और स्नेह उत्पन्न होता है, वृत्ति बदल जाती है। इसलिए गुण ग्राहक वृत्ति, फिर है शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति, स्व के प्रति और सर्व के प्रति। जब वो शुद्धि होगी, रहम का भाव, कल्याण का भाव, गुणग्राही, तब शुभ भाव अंदर से क्या होंगे, नेचुरली जागृत होंगे। देखें और शुभ भावना का झरना, फुवारा, फाउंटन वह शुरू हो जाए। आजकल पता है ना, कुछ ऐसे स्थान बने हुए हैं कि आप उस स्थान पर कदम रखो और पानी की फुवारे क्या हो जाती है, स्टार्ट। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वहां पर कदम रखने होते हैं और कुछ नहीं कर देगा, पानी की बौछार आप पर शुरू हो जाती है नेचुरल। ऐसी साइंस ने टेक्निक अपनाई है। तो साइलेंस वाले, किसी को देखें और इतना शुभ भाव, शुभकामनाएं भरी हुई हो कि नजर गई और शुभ भावनाएं उनके प्रति शुरू हो जाए, स्टार्ट। बस संकल्प शुभ भावनाओं के एक के बाद एक, एक के बाद एक सोच हमें शुरू हो जाए उस आत्मा के प्रति। और जहां शुभ भावना है एक दूसरे के प्रति, तो वातावरण बदल जाता है। आप सब ने ये महसूस किया है कि हमारी दादियां, डायमंड हॉल में हम सब बैठे होते हैं, भरा होता है, हमारी दो तीन दादियां स्टेज पर होती है और उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं, वो सारे डायमंड हॉल का माहौल क्या कर देती है, चेंज, और हमारे मन के भाव भी चेंज हो जाते। हाँ, दादियों जैसा मिलके चलना चाहिए, दादियों जैसा आपस में प्यार होना चाहिए, दादियों जैसा एक दूसरे को हमें आगे रखना चाहिए। आता है ना, भाव उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनमें आपस में ऐसे भाव है, यही भाव से ही भावनाएं परिवर्तन होती है। उन्होंने कुछ बोला थोड़े कि आप जितने बैठे हो अपने भाव को बदली करो, ऐसे कहा नहीं, कहा उन्होंने आपस में एक दूसरे के प्रति जो वृत्ति भाव शुभ है वो प्रत्यक्ष होता है, तो सबकी भावनाएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती है। और उस समय का वातावरण कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है। इसलिए शुभ भावना रखने में, जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो जो कोऑर्डिनेट करने वाला होता है वो कहता है कि तालियां बजाने में कंजूसाई नहीं करो, हाँ? ऐसे ही एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखने में भी क्या न करें, कंजूसाई नहीं करें, शुभ भावनाओं के प्रवाह को ऐसा बहाओ जब पानी का बहुत बड़ा प्रवाह जब बहता है, हर चीज उसमें बह जाती है, व्यक्ति भी बह जाते हैं, क्या नहीं बहता उसमें, इतना फोर्स होता है। तो शुभ भावनाओं का फोर्स इतना होगा पावरफुल, तो सामने वाले व्यक्ति की अशुभ भावनाएं जो भी कुछ हो उसका वर्णन ही नहीं करता है, लेकिन वो उसमें आपकी शुभ भावनाओं में वो बह जाएगा और वो पावन बन जाएगा, वो पुण्य आत्मा बन जाएगा। हम कभी कभी थोड़ी थोड़ी शुभ भावना रखते हैं, शुभ भाव में चेंजेस आते हैं। मैं कई बार ये कहती हूं कि आजकल कलयुगी दुनिया में हर चीज के दाम अर्थात भाव बहुत जल्दी से चेंज होते हैं। सुबह में सब्जी लेने गए इतना रुपए किलो थी, शाम गए इतना रुपए किलो चेंज, हीरा सोना चांदी कई चीजें, हर चीज में आप देखो कुछ समय में भावों में ऊंचाई नीचाई होती है ना। आज से कुछ वर्ष पूर्व कोई भी एक चीज का दूध का भाव ये था तो वर्षों तक वो चला रहा था, और आज थोड़े थोड़े समय में दूध के भाव चेंज होते हैं। क्यों ऐसे, यूज करने वाले हम ही हैं। पहले भी मानव यूज करता था, आज भी करता है, लेकिन आज इन चीजों के उत्पादन करने वाले, यूज करने वाले, बेचने वाले, सब की मन की भावना और भाव बहुत थोड़े समय में ही अंदर में क्या होते रहते हैं, चेंज। कहते हैं कि सुबह में तो मुझे मिले थे, बहुत प्यार से मिले, मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले, शाम को गया इतना सीरियस चेहरा, जो मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो सकी, भाव बदल गया। कितने इतने भाव सोना था भाई, खरीद लेते, लेकिन अब इतने दाम हो गए कि हम खरीद ही नहीं सकते, हिम्मत नहीं है खरीदने की। ऐसे व्यक्ति के मन के भावों में इतना चेंज कि जो उनसे मिलने की हिम्मत भी हम नहीं कर सकते। तो सारा मदार हमारी भाव और भावनाओं पर है, हमारे अंदर का चेंज उसका प्रभाव बाहर वस्तुओं पर पड़ता है, और उससे भावों में चेंज है वो आता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक रस अवस्था, एक रस स्थिति, एक समान भाव, एक के लिए भी और सर्व के लिए भी समान भाव और भावनाएं हमारे मन में रहें। और कई बार हम शुभ भावना रखते हैं लेकिन खुद में शक, और जिनके प्रति शुभ भावना रखते हैं उसमें भी डाउट होता है कि भाई बाबा ने तो कहा है, लेकिन शुभ भावना रखूं, इनके बड़े कड़े संस्कार है, बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पहले ही, डाउट। दूसरा अपने में लाओ कि मेरी शुभ भावना में इतनी ताकत है, मेरी शुभ भावना इतनी पावरफुल है जो इनको बदलेगी, मुझे अपने में भी डाउट। फिर कहां से चेंज, कैसे चेंज आएगा? दूसरा, बाबा ने कहा है इसीलिए रख रहा हूं, और एक नेचुरली मेरे मन में आता है और मैं रखता हूं, तो वो भावना में भी फर्क है। आपने कहा और मैंने किया, ये मेरे मन में आया और मैंने वो कार्य किया, वो दोनों कार्य में क्या होगा, अंतर, चेंज होगा। इसलिए स्वयं नेचुरल शुभ भावनाएं हैं, वो सभी आत्माओं के प्रति हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना, सहयोग देने की भावना। कई बार होता है कि मैं ही आगे रहूं, मेरे आगे कोई जाना नहीं चाहिए, मेरे पीछे रहे आगे नहीं, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो और किसी को देनी नहीं है, वो मैं ही करूं। और ऐसी भावना होगी तो हम दूसरों को तैयार नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। मुझे डर रहता है अंदर में कि मैं सिखा दूं, बता दूं, फिर वो करेगा, मेरे को कौन पूछेगा, मेरी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं, लेकिन हम सबके सामने अर्जुन का उदाहरण है ना, एकलव्य और अर्जुन। एकलव्य को अर्जुन के जो गुरु थे, ऋषि थे, उसने कहा तू इस जाति का नहीं है, मैं तेरे को ये बाण विद्या नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अर्जुन से आगे न चला जाए। लेकिन उसने गुरु का स्टेच्यू बना करके उसने बाण विद्या क्या की, सीखी, प्रैक्टिस की, और अर्जुन से भी आगे चला गया। जिसके भाग्य में है मेरे रोकने से रुकने वाला नहीं है, अपना एक गीत भी बना है ना, कर्म से ज्यादा किसने पाया, बोलो ऐसा कुछ गीत है अपना, भाग्य से ज्यादा किसने पाया है। तो जिनके भाग्य में है वो उसको मिलना ही है, आप आगे नहीं बढ़ाओगे, समय दूसरे सपोर्ट देंगे और वो आपसे आगे जाएगा। तो मैं सदैव सोचती हूँ वो आगे तो जाने ही वाला है डेफिनेट, तो क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनने का भाग्य मैं अपना बना लूं। ये आगे बढ़ाने की वृत्ति, भावना, सहयोग। बाबा ने एक मूली में कहा है कि अपनी जेब में सहयोग की नोट काफी रखो, आपस में परिवार है, एक दूसरे को शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, नॉलेज, गुण, शक्तियां आवश्यक है, उनको मदद करो। और जब ये वृत्ति हमारी होगी तो वायुमंडल, वातावरण वह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वृत्ति का दृष्टि पर भी प्रभाव है, वृत्ति का वाणी पर भी प्रभाव है, और वृत्ति का व्यवहार पर भी प्रभाव है। तीनों सही एक लाइन में तब होगी जबकि वृत्ति हमारी शुद्ध हो, समर्थ हो, श्रेष्ठ हो। कभी भी किसी के भी लिए हमारे मन में कोई भी प्रकार की भ्रांति नहीं रखनी है। किसी का सुन करके हमें अपने भावों में परिवर्तन नहीं करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल दे के पूरा करूंगी कि एक बारी साउथ की साइड में मैं सेवा के लिए जा रही थी। रात्रि का समय था और कोई एक स्थान स्टेशन ऐसा है जहां चोरियां बहुत होती है, तो जो अटेंडेंट है टिकट चेकर था, उसने सबको सावधान किया दबे में कि देखो यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, खिड़कियां बंद करना, आप अपने सामान का ध्यान रखना। अब ये बात कही, उसके बाद स्टेशन आया। स्टेशन आता है, कुछ उतरते हैं, कुछ चढ़ते भी हैं। अभी अंदर जो आवे उनको डब्बे के अंदर बैठे हुए कैसे देख रहे थे, भाई ये चोर तो नहीं है। हालांकि पैसेंजर भी थे उसमें, ट्रैवल करने वाले, लेकिन वृत्ति क्या हो गई, बदल गई। क्योंकि पहले हमको ये कहा गया, इसलिए एक एक व्यक्ति को हम लाउड से क्या करते थे, देखते थे। फर्क पड़ा ना, वृत्ति चीज, और जब अंदर एंटर होने वाले को फीलिंग क्या आएगी, सब लोग ये शकनी की नजर से क्यों देख रहे हैं मुझे, होगा कि नहीं माहौल, क्योंकि सबकी वृत्ति एक जैसी डाउट की, तो पूरे डब्बे का माहौल चेंज होगा। इसलिए हमें अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ और समर्थ बनाना है और वायुमंडल को, वाइब्रेशंस को चेंज करें और पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति, संध्या का समय तो विशेष हुआ है, लाइट फरिश्ते लाइट का प्रकाश का आकारी स्वरूप हल्के से सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म आकारी रूप में बाबा भी विराजमान है और हम सब की अंगुली पकड़कर पूरे संगठन को, अपनी सेना को लेकर विश्व के ऊपर आसमान ही भ्रमण करा रहे हैं। और हे वरदानी, महादानी फरिश्ते, विश्व की हर आत्मा को शांति का, सुख का दान दो। सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर स्नेह के पुष्प बरसाओ। कितने समय से ये भक्त पुजारी रोगी अशांत आत्माएं परेशान आत्माएं आप फरिश्तों का आसमान की ओर देखकर इंतजार कर रही है। संध्या के समय पर ये आकारी फरिश्ते आसमान में विचरते हैं, भ्रमण करते हैं, और यही वो फरिश्ते हैं जो हमारी जिसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। विशाल दिल होकर सर्व पर रहम दया करुणा बरसाते हुए जो बाबा से मिला है सारे विश्व की आत्माओं को बांट रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य फरिश्तों का झुंड नीचे तड़पती हुई आत्माएं फरिश्तों को देखकर हर्षा रही है। अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। अब हम आत्माएं तृप्त संतुष्ट हो गई। फरिश्तों को देखने की, फरिश्तों को पाने की इच्छा पूर्ण हो गई।
और सबका भला।